आप दो दिन से एक नए विषयों के साथ अच्छे अच्छे वक्ताओं के से सुन रहे हैं और रोज हम एक नए सेशन के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। जैसे आज सुबह भी आपने परमात्मा के बारे में जाना और कल आपने अपने बारे में जाना कि हम कौन हैं, तो आज हम एक नए विषय के साथ, एक बहुत सुंदर विषय के साथ यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्योंकि जीवन में जो रिश्ते हैं वो एक कड़ी हैं जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ते हैं। जब एक बच्चा एक परिवार में पैदा होता है तब से उसके रिश्ते शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला रिश्ता उसका माँ के साथ जुड़ता है, फिर पिता के साथ, फिर थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल में जाता है तो टीचर के साथ रिश्ता जुड़ता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, जॉब करता है तो अपने बॉस के साथ रिश्ता जुड़ता है। तो ऐसे बचपन से लेकर अंतिम घड़ी तक हम अपने रिश्तों को जोड़ते हैं और अपने रिश्तों को निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज ये रिश्ते बदलते जा रहे हैं। जैसा हम चाहते हैं वैसे हमारे रिश्ते आज हैं, क्या कहेंगे, हैं नहीं हैं। तो हम सब रिश्तों को अच्छा बनाना चाहते हैं, सब चाहते हैं, लेकिन उसके प्रोसीजर को, उसकी विधि को हमें बदलना होगा। तभी हमारा आज का विषय है कि कैसे हम वैल्यूज के द्वारा अपने रिश्तों को बनाएं, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस का थीम ही है वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। कोई भी काम करते हैं हम, जब तक उसमें वैल्यूज नहीं आएंगी तब तक हमें उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। तो इसलिए अगर हमें रिश्तों को अच्छा बनाना है तो सबसे पहले हमें रिश्तों को समझना बहुत जरूरी है। हमारे रिश्ते हमें क्या कहते हैं, क्योंकि जब रिश्तों में एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, सबसे बड़ा कारण रिश्तों के खराब होने का आज एक्सपेक्टेशन है। आज जब बच्चा पैदा होता है हम उसकी परवरिश करते हैं तो सबसे पहली एक्सपेक्टेशन क्या होती है, क्या होती है, बुढ़ापे में काम आएगा। जो अभी हम कर रहे हैं यही बच्चा जब बुढ़ापे में जाएंगे तब हमारी क्या करेगा, सेवा करेगा। लेकिन जब वो ऐसा नहीं होता है तो हमें क्या होता है, दुख होता है। और दूसरी बात, जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तब हम उसके प्रति पहले से ही उसका परसेप्शन बना लेते हैं कि वो ऐसा होगा, ये रिश्ता मेरा ऐसा होगा। लेकिन जब वो ऐसा नहीं निकलता है तब हम कहते हैं मैंने सोचा तो ये था और हो कुछ और ही गया। तो इसलिए अगर हमें रिश्तों को अच्छा बनाना है तो हमें एक्सपेक्टेशंस को खत्म करना होगा। और साथ साथ आज जो हमारे रिश्ते हैं कहीं ना कहीं चीजों पर आधारित हो गए हैं। आज हम कहते हैं ये जो जमाना है वो मटेरियलिस्टिक है। आज हमारी खुशी, आज हमारी वैल्यूज, आज हमारी शांति चीजों पर आधारित है। अगर वो चीज मेरे पास है तो मैं खुश हूं, मैं शांत हूं। लेकिन अगर वही चीज मेरे से छीन ली गई तो वही मेरी खुशी को साथ ले जाते हैं। ऐसा है, ऐसा ही हो रहा है। तो आज हम अपने रिश्तों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं जितना चीजों को दे रहे हैं। तभी एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है कि एक पिता अपने घर में एक बहुत सुंदर गाड़ी लेके आता है। जब घर में कोई नई गाड़ी आती है तो बहुत खुशी होती है और हमें लगता है कि इस गाड़ी के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, कोई खरोच नहीं आनी चाहिए, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम उसकी बहुत संभाल करते हैं। तो 2-3 दिन के बाद पिता देखता है कि उसका बच्चा गाड़ी के ऊपर ब्लेड के साथ कुछ लिख रहा है, तो पिता को बहुत गुस्सा आता है और उसके हाथ में कटर होता है, और जैसे ही गुस्सा आता है तो वो गुस्से में, कहते ना जब जोश होता है तब होश नहीं होता है, तो वो कटर से गुस्से में अपने बच्चे के हाथों पर मारता है और बच्चे की चारों उंगलियां कट जाती हैं। लेकिन जब उसको होश आता है कि मैंने ये क्या किया, तब वो उसको हॉस्पिटल लेके जाता है और उसका इलाज शुरू होता है, और वो रोते रोते बाहर आता है हॉस्पिटल से और अपनी गाड़ी के पास खड़ा होता है, और गाड़ी की तरफ जब वो नजर घुमाता है तो देखता है कि बच्चे ने जो ब्लेड के साथ गाड़ी पर लिखा था वो लिखा था आई लव यू पापा। तो तब जब वो ऐसा सीन देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं और वो जाकर के सुसाइड कर लेता है। तो देखिए रिश्ता क्या था और चीज क्या थी। चीज तो आज है कल नहीं है, चीजें आ भी सकती हैं दोबारा, लेकिन एक इंसान जब चला जाता है तो वो वापस कभी नहीं आता है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में रिश्तों को समझना बहुत जरूरी है, और रिश्तों को हम तभी समझ सकते हैं जब हम अपने रिश्तों में शांति, प्रेम, सुख, आनंद, ज्ञान को लेके आएंगे। क्योंकि परमात्मा कहते हैं जैसे हम कोई भी व्यक्ति से नाराज हो जाते हैं तो परमात्मा हमें बहुत अच्छे शब्दों में कहते हैं कि बच्चे नाराज वही होता है जो ना प्लस राज, जो राज को नहीं जानता वही नाराज होता है। तो इसलिए हमें अपने रिश्तों की वैल्यूज के राज को समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम उसके राज को नहीं समझेंगे तब तक हम अपने रिश्तों में अनबन में रहेंगे, क्योंकि आज रिश्ते हम देख रहे हैं टूटते जा रहे हैं। आजकल की जो यंग जनरेशन के रिश्ते हैं आप देखेंगे, आज शादी हुई कल डिवोर्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि संस्कारों का मिलन नहीं हो रहा है। जो संस्कार एक दूसरे से मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। शादी से पहले कुछ और थे और शादी के बाद कुछ और संस्कार बाहर आते हैं। तो इसीलिए अगर हमें रिश्तों को अच्छा बनाना है तो संस्कारों को मिलाना बहुत जरूरी है। तो आज हम इसी विषय को लेकर के चर्चा करेंगे तो इसके लिए हमारे बीच में हमारे एक्सपीरियंस्ड वक्ता हमारे सामने हैं, तो मैं उनको बुलाना चाहूंगी। सबसे पहले हमारे बीच में हमारे पीयूष भाई जो के दिल्ली से हैं, दिल्ली लोधी रोड से हैं, तो मैं सबसे पहले उनको बुलाना चाहूंगी कि वो आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। तो हम सब कर्तव्य ध्वनि से उनका जोरदार स्वागत करेंगे, और साथ साथ हमारे बीच में डॉक्टर पंडित जी शामिल हैं जो फॉर्मर वाइस चांसलर हैं बिहार यूनिवर्सिटी से, तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगी कि वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। और इसके साथ साथ मैं बहनों से अनुरोध करूंगी कि वो पुष्पों के साथ और बैजेस के साथ हमारे वक्ताओं का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से पीयूष भाई का स्वागत हो रहा है। तो आज हम अपने विषय को लेकर के चलते हैं, तो सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगी पीयूष भाई से कि वो हमें इस विषय के बारे में बताएं कि हम कैसे अपने रिश्तों में वैल्यूज को ला सकते हैं, क्योंकि पीयूष भाई को मैं काफी समय से जानती हूं और हमने देखा है कि जब इनको कोई भी लेक्चर देना होता है तो कैसे हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे वैल्यूज को इम्प्लीमेंट करें, तो ये बहुत अच्छा बताते हैं। और ये एक रायोगा ट्रेनर भी हैं और इनको इस रायोगा नॉलेज में 28 साल हो चुके हैं और साथ साथ इन्होंने 400 आर्टिकल्स भी लिखे हैं ऑन मैनेजमेंट मेडिटेशन और साथ साथ डिफरेंट फील्ड्स में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, बैंक्स में, हॉस्पिटल और साथ साथ कॉरपोरेट सेक्टर्स में भी जाकर ये अपने लेक्चर्स देते हैं, लाइक स्ट्रेस मैनेजमेंट, द आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग, हार्मोनियस रिलेशनशिप, तो ऐसे विषयों पर भी ये अपने लेक्चर्स देते हैं। और 1500 से भी ज्यादा ये लेक्चर्स अपने डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट सेक्टर्स में दे चुके हैं और एजुकेशन विंग के भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और साथ साथ साइंटिस्ट और इंजीनियर विंग के भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। तो ऐसे भाई जी का हम जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे और इनसे निवेदन भी करेंगे कि आज के इस विषय पर हमें बताएं।
आप सभी बहुत प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। बहुत सारे भाई बहन पीछे बैठे हैं, बहुत दूरी लग रही है, तो आप अगर आगे आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। और जो पीछे बैठने वाले होते हैं मैं उनसे बहुत सवाल पूछता हूं, तो सवालों से बचना चाहते हैं तो आगे आ जाएंगे और बीच में आ जाएंगे। इधर वाले भी जो हमारे भाई बहने हैं अगर बीच में आ जाएंगे जो मेरे लेफ्ट में बैठे हैं, हाँ जल्दी से आ जाइए प्लीज, जल्दी से आ जाइए, देरी नहीं करेंगे क्योंकि समय कम है। और अगर आप चाहेंगे तो जब तक यहां हैं अपने मोबाइल्स को भी बंद कर लेंगे तो आपको कार्यक्रम में बहुत आनंद आएगा। बहुत अच्छी बातें बताई जा रही हैं, आप उनको नोट्स भी कर सकते हैं। तो कई बार यहां हमें बातें याद रहती हैं फिर घर में जाते हैं तो भूल जाते हैं, तो अगर लिख करके ले जाएंगे तो फिर घर में भी याद आ सकती हैं वो बातें, आप दूसरों के साथ भी उनको साझा कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर विषय है, हमारे संबंध मधुर कैसे हों, नर्चरिंग रिलेशनशिप थ्रू वैल्यूज, मूल्यों के द्वारा हम अपने संबंधों को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे उनको और अच्छे बनाएं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। आप सोचिए अगर हमारे जीवन में से संबंध निकल जाएं तो क्या बचेगा फिर, अगर हमारी लाइफ में से रिलेशंस न हो तो क्या बचेगा, बताइए। हम अपनी लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और आज हमारे संबंध कैसे हैं, आई वॉन्ट टू इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ यू, बताइए जो सामने सामने बैठी है ना। मातृशक्ति, आज मदर्स डे है, आप चाहें तो सभी मदर्स के लिए बहुत जोरदार तालियां बजा सकते हैं। आज मातृशक्ति दिवस है, तालियां थोड़ी हल्की बजी हैं, हाँ दोबारा से तालियां बजा दीजिए। इसलिए मैं मातृशक्ति से पूछता हूं हमारे रिलेशंस कैसे हैं आज, कुछ बोलते नहीं है, शायद मौन में है। आज हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं है, हालांकि हमारा भारत जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम, संयुक्त परिवार की यहां व्यवस्था रही है और बहुत सारे देशों में इस पर शोध हो रहा है कि जब सारी दुनिया में परिवार टूट गए हैं फिर भी भारत में ऐसी एकता कैसे है। लेकिन आज हमारे संबंधों में भी क्या हो गया है, एक बारी पति पत्नी में तकरार हो गई, तकरार होती है ना, सबकी होती है, कि कोई ऐसे हैं जब से शादी हुई एक बारी भी कभी हमारा संवाद आपस में बंद नहीं हुआ, बातचीत बंद नहीं हुई। कोई ऐसे हैं? जरा हाथ उठाएंगे। मैं आपके पति देव से पूछूंगा फोन करके। इट्स नॉट वन वे, यू नो। देखिए, दो तीन हाथ हार्डली उठे हैं। देखिए कैसी विडंबना है, जबकि हम कहते हैं दो आत्माओं का मिलन है और संबंध को हमारे यहाँ विवाह को बहुत पवित्र संबंध माना गया है। तो पति पत्नी में तकरार हो गई और तकरार इतनी बढ़ गई कि आपस में कम्युनिकेशन भी बंद हो गया। बहन जी कहती हैं थोड़े शिकवे भी हो और थोड़ी शिकायत भी हो तो मजा जीने का और बढ़ जाता है। लेकिन ये यहाँ योगियों के लिए शायद इतना समीचीन नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ यही सिखाया जाता है कि अगर पति ने कोई बात कही तो पति उसको मान ले, और अगर दूसरी तरफ से कही तो वो मान ले। यही हमें जीवन में आगे बढ़ने की कला, यही आर्ट ऑफ लिविंग है। तो पति देव को कोई ऑफिस के काम से अगले दिन जल्दी जाना था और उनको सवेरे उठने की आदत नहीं, तो उन्होंने सोचा क्या करूं मैं। तो उनको मन में आया अब संवाद तो है नहीं, बातचीत नहीं है, तो उन्होंने अपनी पत्नी को चिट्ठी लिख दी कि मुझे सवेरे जल्दी जाना है, 4 बजे उठा देना। और वो चिट्ठी पत्नी के तकिए के नीचे रख दी। पत्नी ने जब ये चिट्ठी पढ़ी, क्योंकि दोनों में ही आपस में एक दूसरे के अंदर ऐसी भावना पैदा हो गई थी, ऐसा हो गया था, तो पत्नी ने भी नैले पे दहला, जैसे कहते हैं, तो पत्नी ने भी एक चिट्ठी लिखी कि 4 बज गए हैं, आप उठ जाइए, और वो पति के तकिए के नीचे रखती। तो आज हमारे सामने क्या मुश्किल आ रही है, हमारे संबंधों को कौन सी चीज तोड़ रही है, वो है हमारा ईगो। सबसे बड़ा व्यवधान हमारे संबंधों में क्या है, हमारा अहंकार। तो इसलिए अगर हम कैसे भी इस अहंकार को खत्म कर दें, अगर हम झुकना सीख लें, जैसे कल दादी जी ने बताया, हारमनी माने मैंने हार मान ली, आपकी जीत हो गई। तो ये सबसे बड़ी कला है। तो भाइयों बहनों, अगर हम अपने संबंधों को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारी लाइफ में कौन सी हो सकती है, कि हम विनम्र बनना सीखें, पोलाइट, हम्बल। इसलिए शायद दुनिया में कहते हैं झुकता वही है जिसमें जान है, झुकता वही है जिसमें जान है, और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। तो अगर मैं अकड़ता हूं तो फिर मैं कौन हूं? आपको देखो कहना भी अच्छा नहीं लगता है, तो फिर करना अच्छा लगेगा? करना अच्छा लगेगा तो आज से क्या करेंगे, क्या करेंगे? पहले पुरुषों से पूछता हूं, भाइयों से, जी पत्नी की बात मानेंगे? भट्टाचार्य साहब सोच में पड़ गए, देखिए हैं, मानेंगे बात? कहते बहुत मुश्किल है, यही तो मुश्किल है, मानना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने आज तक क्या माना, पत्नियों की हमने बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं की। शायद वो तो घर में काम करती हैं, घर में रहती हैं, लेकिन देखा ये गया है कि आप तो 8 घंटे काम करते हैं और पत्नियां 24 घंटे काम करती हैं, तो उनके कार्य की वैल्यू को हम समझें और एक दूसरे की अहमियत को समझें, एक दूसरे को हम वैल्यू देना सीखें। और आजकल पत्नियां भी क्या कर रही हैं, कहते मेरे पास कानून है, मैं 2 मिनट में आपको जेल की हवा खिला दूं। लेकिन जिस घर में कानून आ गया, जेल आ गई, पुलिस आ गई, उस घर में फिर शांति नहीं हो सकती है ना। तो इसलिए हमें एक दूसरे की बात को तवज्जो देनी है, ठीक है? तो रिलेशंस की बात चल रही है, वैल्यूज की बात चल रही है। मैं चिंतन कर रहा था, इसको हिंदी में हम कहते हैं संबंध। क्या कहते हैं भाइयों बहनों, क्या बोलते हैं? आप बोलते नहीं है, तेजी से बोलिए, क्या बोलते हैं? संबंध। तो ये जो शब्द है ना, इसमें ही इसका सार समाया हुआ है। 5 शब्द ऐसे हैं, स, म, व, न और ध। तो अगर हमें अपने संबंधों को बहुत मधुर बनाना है, बहुत अच्छा बनाना है, तो सबसे पहली बात स माने समानता, इक्वलिटी। आज हमारे संबंध क्यों खराब होते हैं? क्योंकि वो छोटा है, मैं बड़ा हूं, लेकिन वो तो मेरा रोल है ना। छोटा बड़ा क्या है भाइयों बहनों? छोटा बड़ा क्या है? वो तो रोल है, लेकिन मैं तो सोल हूं। रोल कभी छोटा होता है? रोल तो कुछ भी हो सकता है। रोल इज नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर इम्पॉर्टेंट क्या है? हाउ यू प्ले दैट रोल। ऑस्कर का नाम सुना आपने? हैव यू हर्ड ऑस्कर? किस किस ने सुना, जरा हाथ उठाएं। अच्छा, सारों ने सुना। ताली बजाइए अपने लिए, आपकी जीके बहुत अच्छी है। तो एक बार एक व्यक्ति को ऑस्कर मिला। ऑस्कर बहुत बड़ा अवार्ड होता है। तो अब उस व्यक्ति को ऑस्कर क्यों मिला, वो उनका साइटेशन लेटर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, जरा ध्यान से सुनना। दिस जेंटलमैन प्लेड रोल ऑफ ए बैगर। इस व्यक्ति ने कौन सा रोल प्ले किया? भिखारी का। दिस जेंटलमैन प्लेड रोल ऑफ ए बैगर इन ए वेरी नेचुरल वे, हेंस ही इज अवॉर्डेड ऑस्कर। तो आप बताइए रोल कौन सा था? व्हाट वॉज द रोल? व्हाट वॉज द रोल? आप बोलते नहीं है, मौन है आज। आप बोल सकते हैं, व्हाट वॉज द रोल? फिर भी आवाज नहीं आई। बैगर का रोल था, भिखारी का रोल था। लेकिन शर्त क्या है? अगर भिखारी के रोल को भी आपने जीवंतता से निभाया, देयर आर पॉसिबिलिटीज दैट यू मे गेट ऑस्कर। तो आज से हमें क्या करना है? कभी अपने को कम नहीं आंकना है, अभिमान में भी नहीं आना है, लेकिन सुमान में रहना है, समानता। विवेकानंद जी, तब तो सारा भारत एक था, बंगाल से लाहौर गए पंजाब, 100 वर्ष पहले की बात होगी। तो जब वहां गए तो वहां किसी ने हवाई अड्डे पे ही पूछा, विवेकानंद जी व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, आप क्यों आए हैं यहां, आपकी भाषा अलग, आपकी संस्कृति अलग, आपका पहनावा अलग। तो विवेकानंद जी मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया कि मैं बंगाल से पंजाब ये देखने आया हूं कि दोनों संस्कृतियों में समानताएं क्या है। तो भाइयों बहनों, हमारे संबंध कब अच्छे रहेंगे? When we see what are the common things between all of us. इसलिए हम अब तक भी भारत में कहते हैं सबका मालिक एक। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई। तो कैसे भाई भाई हैं? कैसे भाई भाई हैं बताइए भाई सब? कैसे भाई भाई हैं सभी? हैं जी, कैसे? शरीर के नाते से हम भाई भाई नहीं है, वो तो सबके पिता अलग अलग है। हार्डवेयर के पिता सबके अलग अलग हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर का पिता सबका एक है। इसलिए कहते सबका मालिक एक। तो अगर हमारे अंदर समानता की भावना आ जाए कि हर इंसान का रोल अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम सब एक ही पिता की संतान हैं, तो फिर क्या होगा संबंध हमारे? बहुत अच्छे संबंध हो जाएंगे। तो स माने समानता और म माने महानता। आप माफ कर दीजिए, गलती कर दी ना किसी ने, कहते गलती तो कोई भी कर सकता है, लेकिन हमारे मन में क्या भावना आती है? मैं इसको ठीक करूंगा, मैं इससे बदला लेकर के रहूंगा। तो फिर उसका परिणाम क्या होता है? सारी जिंदगी वो संबंध हमारे बोझ बन जाते हैं, बहुत मुश्किलात होती है। तो हमें आज से क्या करना है? अगर समझो किसी ने गलती कर दी, किसी ने कोई ऐसा वैसा कार्य कर दिया जो मुझे पसंद नहीं है, तो आप उसको क्षमा कर दीजिए। इसलिए भारतीय दर्शन में कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम्। क्षमा कौन कर सकता है? क्षमा कौन कर सकता है बताइए? जो वीर है। इसलिए किसी ने कहा है मैंने कुछ ऐसे अपनी लाइफ को आसान कर लिया। आसान समझते? आसान माने इजी, स्मूथ। मैंने कुछ ऐसे अपनी लाइफ को आसान कर लिया और किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। तो आज से हमें क्या करना है? आज से भाइयों बहनों क्या करेंगे? आप बोलते नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे समझ रहे हैं आप, या यहां हैं या कहीं बाहर घूम रहे हैं? कहां हैं आप? यहीं हैं? यहीं हैं या बाहर घूम रहे हैं? पता नहीं लगता है, आप कुछ बोलते नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। कहां हैं, यहां हैं या बाहर हैं? यही है तो फिर जवाब तो दीजिए कम से कम। तो हम अपनी लाइफ को आसान कैसे करेंगे? क्षमा कर दीजिए। अगर आपकी गलती है तो आप क्षमा मांग लीजिए, और अगर सामने वाले ने गलती की है तो उनको क्षमा कर दीजिए, आप महान बन जाइए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गलती कोई भी कर सकता है, गलती हो सकती है, गलतियां इंसानों से ही होती है। तो सौ माने समानता की भावना हो तो संबंध अच्छे रहेंगे, फिर म माने महानता की भावना, आप बड़े हो जाइए। देखो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, छोटे बच्चे कोई गलती करते हैं, कहते कोई बात नहीं छोटे हैं ना, तो हम क्या हैं, हम सारी ह्यूमैनिटी के बुजुर्ग हैं, एंसेस्टर्स हैं। हमें ब्रह्मा कुमारी में यही पढ़ाया गया कि हम सारी सृष्टि के एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं। तो बड़ों को क्या होता है, क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। तो स म और व माने हम बोलते बहुत हैं। आज हमारे संबंधों में कटुता क्यों आई, व्हाट इज द रीजन, बिकॉज वी स्पीक टू मच, बहुत बोलते हैं। हालांकि भगवान ने हमें सिखाया, भगवान ने एक मुख दिया और दो कान दिए, किस लिए, एक मुख दिया और दो कान दिए, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग, हमें बोलना कम है और सुनना, लेकिन हम करते क्या है, व्हाट डू वी डू, हम क्या करते हैं, हम सुनते कम हैं या तो बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, और सारे दिन बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। आप देख रहे हैं जैसे आपकी आयु बढ़ रही है तो आपकी आंखों में भी चश्मा लग गया, आपके पैरों में दर्द होता है, आपके हाथों में दर्द होता है, लेकिन सारी शक्ति आपकी जीव में आ गई है। क्या हो गया है भाइयों बहनों, आज क्या हो गया है, सारी शक्ति कहां गई है, जीव में आ गई है। तो अगर हमें संबंधों को मधुर रखना है तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है, ब्रह्मा कुमारीज का स्लोगन क्या है, कम बोलिए, धीरे बोलिए और मीठा बोलिए, फिर आपके संबंध कभी खराब नहीं होंगे, कम बोलिए। इसलिए बड़े बड़े साधु, कोई संत, कोई महात्मा, उनके एक ही महावाक्य, दादी जानकी जी कल कितना बोले, कितनी देर बोलो होंगे, थोड़ी देर, 5-10 मिनट, लेकिन उनकी बातें हमारे मर्म को स्पर्श कर गई। क्यों, क्योंकि उनके वो 1 मिनट 5 मिनट के बोल नहीं है, उनकी वो 80 वर्ष की तपस्या का प्रतिफल है। तो आज से हमें क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, हमें कम बोलना है। इसलिए कहते द लेस यू टॉक, ध्यान से सुनेंगे, द लेस यू टॉक द मोर यू लिसन टू। आप जितना कम बोलेंगे लोग आपको उतना ही ज्यादा सुनना चाहेंगे, और ज्यादा बोलेंगे तो क्या होगा, ज्यादा बोलेंगे तो क्या होगा, बकवास, और कम बोलेंगे तो बोल हमारे अनमोल हो जाएंगे। तो आज से हमें क्या करना है, आज से हमें क्या करना है, सोच समझ के बोलना है। इसलिए भगवान ने, देखो हमारा मुख यहां है और दिल यहां है और दिमाग यहां है, व्हाट इज द मीनिंग, क्या मीनिंग है बताइए बहन जी, जो सेकंड रो में बैठे हैं ना, हाँ, लाल रंग की पोशाक पहन के, हाँ जी, व्हाट इज द मीनिंग, हमारा मुख यहां है और हमारा दिल यहां है और दिमाग यहां है, व्हाट इज द मीनिंग बहन जी, आप बताएं, हाँ जी, हाँ, अलाइनमेंट हो, और भट्टाचार्य जी व्हाट इज द मीनिंग, हमारा हार्ट यहां, हमारा हेड यहां, हमारा मुख यहां, सोच समझ के बोलिए, ठीक है, बोलने से पहले तोलिए, बोलने से पहले, क्योंकि एक बारी आपने कोई शब्द बोल दिया फिर वो वापस नहीं आ सकता है। इसलिए दुनिया में कहते हैं वर्ड्स रूल द वर्ल्ड, भाइयों बहनों क्या हो रहा है, वर्ड्स रूल दी वर्ल्ड। केवल द्रौपदी ने एक ही शब्द बोला और सारा महाभारत हो गया, केवल केकई ने एक ही बात बोली और पूरी रामायण लिख दी गई। तो आज मुझे क्या करना है, आज मुझे क्या करना है, कैसे बोल बोलने हैं, कैसे बोल बोलने हैं, जो सुई धागे का काम करें लेकिन कैंची का काम न करें, ठीक है। हर लफ्ज महकता हुआ गुलाब है, लफ्ज समझते, लफ्ज माने शब्द, वर्ड जो हम बोलते हैं, हर लफ्ज महकता हुआ गुलाब है, इसे लहजे के फर्क से तलवार न बना। 90% of the problem in the world today are because of the tone of the tongue. आप कैसे बोल रहे हैं, आपका बोलने का लहजा क्या है। तो आज से हम क्या करेंगे, ब्रह्मा कुमारी का कौन सा स्लोगन याद रखेंगे बताइए, कम बोलिए, कम बोलिए। बिकॉज मेडिकल साइंस हैज प्रूव्ड मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन यू स्पीक। सबसे ज्यादा ऊर्जा आपकी खर्च कब होती है, जब आप बोलते हैं। तो कम बोलेंगे, फिर धीरे बोलेंगे। डोंट स्पीक लाउडली, स्पीक क्लियरली। ठीक है, और कैसे बोलेंगे, मीठा कैसे बोलेंगे, चीनी खाने के लिए तो डॉक्टर ने मना कर रखा है, कैसे मीठा बोलेंगे, जब हमारे अंदर अभिमान नहीं होगा तो मीठे शब्द निकलते हैं। फितरत को नहीं पसंद सख्ती जुबान में, परमात्मा को हमारी जुबान में बिल्कुल भी सख्ती पसंद नहीं है, क्रोध पसंद नहीं है, कड़वाहट पसंद नहीं है। फितरत को नहीं पसंद सख्ती जुबान में, पैदा नहीं की इसलिए हड्डी जुबान में। ठीक है, भगवान ने जानबूझ के हमारी जुबान में कोई हड्डी नहीं लगाई, ताकि वो हमें ये सिखाना चाहते हैं कि हम कैसी बातें बोलें जो सबको एक करने वाले हों। लेकिन हम ऐसी बातें बोलते हैं कि हड्डियां तुड़वा देते हैं। ओके, तो हमें स माने समानता, म माने महानता, और व माने क्या करना है, कम बोलिए। ठीक है, और न माने नकारात्मकता नहीं। आज हमारी लाइफ में क्या हो रहा है भाइयों बहनों, बहुत नेगेटिविटी, बहुत अपने बारे में भी नकारात्मक सोचते हैं, दूसरों के बारे में भी नकारात्मक सोचते हैं, और उसका परिणाम क्या हो रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी। तो कल से हमें क्या करना है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुमारो ऑनवर्ड्स, कि हम कल से सारे दिन अच्छा सोचेंगे। और अच्छी सोच की शुरुआत कहां से करेंगे, सवेरे जब आप उठते हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस ये मानती है कि जिस टाइम पर भी हम उठते हैं सवेरे, तो वो जो आधा घंटा है, पहला एक घंटा है, उसको मेडिकल साइंटिस्ट कहते हैं गोल्डन आवर ऑफ द डे। क्या कहते हैं भाइयों बहनों, क्या कहते हैं, पीछे वाले बोलेंगे गोल्डन आवर ऑफ द डे। वो पहला घंटा आपके सारे दिन को डिसाइड करने वाला है कि आज आपका सारा दिन कैसे गुजरने वाला है। तो कल सवेरे उठ करके हम क्या करेंगे, अब तक हम अपना दिन कैसे स्टार्ट करते हैं, कोई अखबार पढ़ता है, कोई टीवी देखता है, कोई इंटरनेट पर बैठा है, कोई व्हाट्सएप पर कोई मैसेज भेज रहा है, सारी नेगेटिव एनर्जी आ रही है, ऑल नेगेटिव। और ये जो ब्रेन कंप्यूटर है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर नेगेटिव एनर्जी इनपुट्स नेगेटिव हैं, तो सारे दिन आउटपुट्स भी कैसे निकलेंगे, नेगेटिव निकलेंगे। तो कल से मुझे क्या करना है, टुमारो ऑनवर्ड्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू, कल मैं सबसे पहले अखबार, टीवी, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इन सब पर बातचीत नहीं करूंगा। कल सवेरे उठकर मैं सबसे पहले अपने आप से बात करूंगा। यस और नो, वेरी गुड। अपने आप से कैसे बात करेंगे बेंजी, अपने आप से कैसे बात करेंगी, मैं आत्मा हूं, ओहो तो बड़ी मुश्किल आ गई, कौन सी आत्मा है आप, ओ कहती आत्मा हूं, कौन सी आत्मा है, वेरी गुड, तालियां बजाइए इनके लिए बहुत जोरदार। तो कल सवेरे उठकर के ब्रह्मा कुमारी का स्लोगन जो मैं पिछले 32 वर्षों से फॉलो कर रहा हूं, रात को 10 माने बस, नोट कर लें भाइयों बहनों, रात को 10 माने और सवेरे 4 माने तैयार। आप सोच में पड़ गए हैं। कल सवेरे क्या करना है, जल्दी उठिए, 4 बजे भले नहीं उठिए, लेकिन ट्राई टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और कल सवेरे क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप अपने साथ डायलॉग करेंगे। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस मैं आपको यहां कराता हूं, सभी अपना हाथ ऐसे ऊपर कर लेंगे, बिल्कुल सीधा हाथ करिए, वेरी गुड। डॉक्टर कहते हैं आपके हाथ में दर्द क्यों हुआ, क्योंकि आपका हाथ कभी सीधा नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल सीधा करिए, और फिर अपनी हथेली को ऐसे मोड़े जैसे मैंने मोड़ा, और पीछे ले जाएं और मेरे साथ बोलिए शाबाश। आवाज नहीं आई? शाबाश, शाबाश। आई एम ओके, आई एम ओके, आई एम ओके, आई एम यूनिक, आई एम यूनिक, आई एम यूनिक। और लास्ट बात सभी मिलकर के बोलेंगे, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। ये चारों ही बातें पांच पांच बारी कल सवेरे उठते ही सबसे पहले मुझे अपने साथ करनी है। सबसे पहली बात कौन सी करेंगे? शाबाश। आप दूसरों से शाबाशी एक्सपेक्ट न करिए, राइट? और दूसरी बात कौन सी बोलेंगे? आई एम ओके। बीमारी क्यों आई? आप बीमार नहीं थे। बीमारी कब आई? किसी पार्टी में गए, किसी क्लब में गए, किसी से मिलने गए और किसी ने कह दिया, भाई साहब आपका चेहरा तो पीला पड़ गया है, बस अब बीमार हो गए। इसलिए हमें ब्रह्मा कुमारीज में सिखाया गया डिजीज, बीमारी को क्या कहते हैं? डिजीज, डिस ईज। डिजीज कब आई? व्हेन यू नॉट इजी हेयर। एक बहुत बड़े डॉक्टर, बहुत नामी ग्रामी कार्डियोलॉजिस्ट और उनकी वाइफ हार्ट की पेशेंट, ध्यान से सुनना, बहुत नामी ग्रामी दिल के डॉक्टर और उनकी वाइफ दिल की पेशेंट, दोनों मूवी देखने चले गए। मूवी चल रही थी, वो मूवी एंजॉय कर रहे थे, तो पत्नी ने कहा, सुनिए कब बताइए, कहती मुझे थोड़ी सीने में पेन हो रही है, आपके पास कोई मेडिसिन है? तो डॉक्टर साहब मुस्कराए, कहते मेरे पास ये दवाई है, आप ये गोली अपनी जीभ के नीचे रख लीजिए। तो उन्होंने कर लिया। 15 मिनट के बाद डॉक्टर साहब ने पूछा, हाउ आर यू? शी सेड आई एम ऑल राइट। तो डॉक्टर साहब मुस्कराए, कहते मेरे कोट का बटन जो आपकी जीभ के नीचे रखा है उसको वापस कर दीजिए, राइट? सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, व्हाट आई वांट टू टेल यू, एवरीथिंग बिगिंस फ्रॉम हेयर। इफ यू कैन कन्विंस योर सेल्फ दैट यू आर ऑल राइट, इट मीन्स यू आर ऑल राइट। और तीसरी बात कौन सी बताई बहन जी? थर्ड थिंग जल्दी से बताइए, आई एम यूनिक, नो कंपेरिजन। वाई देर इज नो कंपेरिजन? क्यों कंपेरिजन नहीं है? क्योंकि आप सारी दुनिया में घूम आइए, यू गो टू यूएस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कहीं भी चले जाइए, आप जैसा कोई इंसान न हुआ, आप जैसा कोई इंसान न हुआ और न हो सकता है। देन वाई आर यू कंपेयरिंग? अपना कंपेरिजन नहीं करना। हाँ, सीख सकते हैं, यू कैन लर्न फ्रॉम मी, आई कैन लर्न फ्रॉम यू, बट आई कैन नॉट बी यू एंड यू कैन नॉट बी मी। सिंपल, नो कंपेरिजन। आज हमारे संबंध क्यों खराब होते हैं? क्योंकि हमारे बेटे के 85% आए, हमारे बेटे के 85% आए और जो नेक्स्ट डोर शर्मा जी हैं उनके बेटे के 95% आ गए, बस हमारे लड़के ने हमारी नाक कटवा दी। अब आप बताइए किस किस की नाक कटी है, जरा हाथ उठाएं। किसी की नाक कटी है आपकी? देखो ऐसे, किसी की नाक नहीं कटी। और जो बच्चा 95% लाया, ध्यान से सुनना, जो बच्चा 95% लाया वो रियल लाइफ में ही मे बी ए बिग फेलियर, और जो बच्चा 85% लाया ही मे बी ए वेरी सक्सेसफुल पर्सन। यू नो सचिन तेंदुलकर, कौन कौन जानते हैं, जरा हाथ उठाएं। अच्छा, सारे जानते हैं, ताली बजाइए अपने लिए, आपकी जीके बहुत अच्छी है, वेरी गुड। सचिन तेंदुलकर 1980 के दशक में 10वीं क्लास में मैट्रिक में फेल हुए इंग्लिश के पेपर में, ध्यान से सुनना, 1980 का दशक, मैट्रिक इंग्लिश का पेपर, सचिन तेंदुलकर फेल हो गए। 2012 में जो मैट्रिक की 10वीं क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है उसमें सबसे पहला लेसन सचिन तेंदुलकर के ऊपर ही है, राइट? नो कंपैरिजन, नो कंपैरिजन, ओके? बिकॉज आपका बच्चा यूनिक है। और आप कौन है? आप कौन है? आप भी यूनिक है। सबसे सीखना है, सीखना मना नहीं है, लेकिन हमें कॉपी किसी को नहीं करना है, क्योंकि कॉपी करेंगे तो क्या होगा, कॉपी करेंगे तो क्या होगा, फिर संबंध हमारे बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। सीखिए, अच्छी बात है, ओके? और अंतिम बात कौन सी बताई? वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य, अपने भाग्य की महिमा करिए। भगवान ने आपको क्या नहीं दिया है, He has given you so much, He has given you everything, फिर आप भगवान से कंप्लेंट क्यों कर रहे हो? उसने सब कुछ दिया है, उसका थैंक्स करिए। ठीक है, तो कल सवेरे उठ के हम क्या करेंगे, मैं भी अपनी बात को पूरा करने वाला हूं। हम सवेरे कल उठ के क्या करेंगे भाइयों बहनों, अपने आप से बात करेंगे, फिर सेकंड स्टेप हम उस पिता परमात्मा से बात करेंगे। कैसे बात करेंगे उनसे, कौन कौन बात करेंगे उनसे बताइए। अच्छा, सारे ही बात करेंगे, ओ वेरी गुड, तालियां बजाइए, अपने लिए तालियां बजाइए। कैसे बात करेंगे परमात्मा से, क्योंकि अब हमने यहां ब्रह्मा कुमारीज में आके जान लिया कि परमात्मा मेरे कौन लगते हैं, कौन है मेरे, ही इज माई फादर। और आज मदर्स डे है, ही इज माई मदर ऑल्सो। कौन है वो, जोर से बोलिए, परमात्मा मेरे कौन है, ये वो मेरे माता पिता हैं। इसलिए सारी जिंदगी मंदिरों में कौन सी आरती गाई, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, लेकिन वो केवल आरती गाई। इसलिए भक्ति में कहते हैं, मुख भगवान का नाम बोलता है और मन दुनिया में डोलता है। लेकिन कल सवेरे हम पिता के संबंध को महसूस करेंगे। कल क्या करेंगे भाइयों बहनों, संबंध हमारे कब अच्छे रहेंगे, जब हम उस पिता से जुड़ जाएंगे। घर में जब तक पिता होते हैं तो सारा घर एक होता है, और पिताजी चले जाते हैं तो एक घर में अनेक घर बन जाते हैं। तो अगर हमें संबंधों में मधुरता चाहिए तो हम उस एक पिता की संतान हैं। और हम सब ने क्या समझ लिया है अभी, ही इज माई फादर एंड ही इज माई। तो कल सवेरे हम क्या कहेंगे, कल सवेरे परमात्मा को क्या बोलेंगे उठते ही, गुड मॉर्निंग डैडी। बोलिए तेजी से, बोलिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गॉड। बोलिए, अब धीरे से बोलते हैं, गुड मॉर्निंग गॉड। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भगवान को, परमात्मा को, ईश्वर को गुड मॉर्निंग कौन कर सकते हैं, हु कैन से गुड मॉर्निंग टू गॉड। बताइए, जो पहचानते हैं, और बताइए पीछे से बताएंगे, हु कैन से गुड मॉर्निंग टू गॉड, कौन कह सकते हैं गुड मॉर्निंग कल सवेरे पिताजी को। भाइयों बहनों, जो आज रात को पिताजी को, परमात्मा को, भगवान को गुड नाइट करके सोएंगे, राइट, तो आज से हम क्या करेंगे, रात को सोने से पहले 10 मिनट 15 मिनट टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक सब क्लोज कर दीजिए। दिस इज माई पर्सनल टाइम, लेट मी टॉक टू गॉड। अच्छा काम हुआ, भगवान का थैंक्स कर दीजिए। कोई गलती हो गई, कोई गलती हो गई, भगवान से क्षमा मांग लीजिए। यही मेडिटेशन है, यही हमारे संबंधों में मधुरता की कुंजी है। कहते हैं संबंध हमारे क्यों खराब हुए, स माने समानता, म माने महानता, व माने बोलना कम है, न माने नकारात्मकता नहीं, थिंक पॉजिटिव, और ध माने धैर्यता, पेशेंस। आज पेशेंस नहीं है, इसलिए पेशेंट बन गए हैं। किसी ने गाड़ी के पीछे लिखा, गॉड गिव मी पेशेंस। अपनी कार के पीछे क्या लिखा, गॉड गिव मी पेशेंस, प्लीज हरी अप, दैट इज द प्रॉब्लम। पेशेंस नहीं है यहां, यहां क्या हो गया है, इम्पेशेंट हो गए हैं। आज हमारे संबंध खराब क्यों हुए हैं, क्योंकि हमारे संबंधों में अहम आ गया है। क्या आ गया है, अहम, और हमारे संबंधों में वहम आ गया है। या तो अहम के कारण संबंध खराब हो रहे हैं, या तो वहम के कारण संबंध खराब हो रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी की शिक्षाएं हैं, अहम और वहम को निकालिए तो अंदर क्या हुआ, खाली हो गया, उसमें रहम को भर लीजिए और फिर हमारे संबंध सबके साथ अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो आज से हमें अहम नहीं करना, ईगो नो। ठीक है, एक छोटी एक्सरसाइज करके फिर मैं अपनी बात को पूरा करता हूं। सभी खड़े हो जाएंगे जल्दी से, आज जल्दी से खड़े हो जाएंगे, वेरी गुड, खड़े हो जाइए प्लीज, एंड मेक योर पार्टनर्स, आमने सामने खड़े हो जाएंगे, आज जल्दी से करेंगे, सभी के पार्टनर्स बन गए? यस और नो? किसी के पार्टनर नहीं है? ओ, ये बेंजी कहती है दुनिया की इस भीड़ में हम रह गए अकेले, कोई तो साथ ले ले। सभी के पार्टनर्स बनाइए जल्दी से प्लीज, आमने सामने खड़े हो जाइए। ओके, ध्यान से सुनेंगे, प्लीज पे अटेंशन, ध्यान से सुनेंगे। अपने पार्टनर को बहुत प्यार से देखिए और मुस्कुराइए प्लीज। हमारे फोटोग्राफर आपका फोटो खींच रहे हैं, प्लीज मुस्कुराइए। अपने पार्टनर को बहुत प्यार से देखिए और मुस्कुराइए। ध्यान से सुनेंगे, दोनों में से कोई एक पार्टनर अपने हाथ की मुट्ठी पूरी ताकत से बंद कर लेंगे, कोई भी एक। चाहे कुछ भी हो जाए, मुट्ठी खुलनी नहीं चाहिए। ओनली वन पार्टनर, नॉट टू, ओनली वन। चाहे कुछ भी हो जाए, मुट्ठी खुलनी नहीं चाहिए। पार्टनर नंबर टू, चाहे कुछ भी हो जाए, एक हाथ से पूरी ताकत लगा के मुट्ठी खोल के दिखानी है, शुरू हो जाइए प्लीज। एक हाथ से प्लीज मुट्ठी खोल के दिखाइए। चलिए दोनों हाथ लगाइए। थैंक यू, एक्सरसाइज इज ओवर। प्लीज सिट। मैं अपनी बात को यहां पूरा कर रहा हूं। जल्दी से एक सवाल का जवाब आपको देना है, प्लीज बैठिए। व्हाट डिड यू लर्न? इस एक्सरसाइज से आपने क्या सीखा? भाई साहब आप बहुत ताकत लगा रहे थे मैंने देखा। व्हाट डिड यू लर्न? कुछ बोलते नहीं है। बहन जी आप भी बहुत ताकत लगा रही थी, आपने क्या सीखा? व्हाट डिड यू लर्न? ओके, और बताइए आपने क्या सीखा? आपने क्या सीखा? मैंने पार्टनर नंबर वन को बोल दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मुट्ठी खुलनी नहीं चाहिए। सो हिज आर ईगो वाज अप, आई एम समथिंग। फिर पार्टनर नंबर टू को मैंने बोल दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, एक हाथ से मुट्ठी खोल के दिखानी है। हिज आर और ईगो वाज ऑल्सो अप। सो दिस वॉज द क्लैश बिटवीन टू ईगोज। भाइयों बहनों क्या था? दिस वॉज द क्लैश बिटवीन टू ईगोज। तो हमारे संबंध खराब क्यों हो रहे हैं? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ईगो। काश यू हैव टोल्ड योर पार्टनर आई वॉन्ट टू शेक हैंड विद यू। भाइयों बहनों बताइए, अगर आपने अपने पार्टनर को कहा होता कि मैं आपसे हाथ मिलाना चाहता हूं, तो रिजल्ट क्या होता? बहन जी ताकत लगाने की दरकार पड़ती। हमारे संबंधों में भी मधुरता की कुंजी यही है, हम सबके साथ मिलकर के चलें, दूसरों की भावनाओं की कद्र करें, हर एक को हम वैल्यू दें, तो हमारे संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।
जोरदार तालियों से भाई साहब का धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने हमें इतने सरल शब्दों से बताया कि कैसे हम रिश्तों में मधुरता ला सकते हैं, वैल्यूज ला सकते हैं। और साथ साथ आज हम यहाँ से एक होमवर्क भी लेके जा रहे हैं कि रात को गॉड को गुड नाइट करना और सुबह जल्दी उठकर गुड मॉर्निंग करना और अपना उस एक घंटे को बहुत अच्छा बनाना, ताकि पूरा दिन हमारा क्या रहे, अच्छा रहे। तो इसी के साथ भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस सेशन में हमारे साथ हमारे चेयरपर्सन डॉक्टर पंडित जी शामिल हैं, तो हम उनसे भी चाहेंगे कि वो अपने कुछ व्यूज हमारे साथ शेयर करें। भाई साहब फॉर्मर वाइस चांसलर रह चुके हैं बिहार यूनिवर्सिटी, और साथ साथ फॉर्मर वाइस चांसलर एंड प्रो वाइस चांसलर ऑफ यशवंतराव चौहान ओपन महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी। जब वहां पर ये जो वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी का जब कोर्स स्टार्ट हुआ था, तो भाई साहब निमित्त बने थे इस कोर्स को स्टार्ट करने के लिए। तो इसलिए भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद तालियों के साथ। और साथ साथ भाई साहब आरबीआई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एचडीएफसी बैंक के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। तो भाई साहब से हम निवेदन करते हैं कि वो अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करें।
ओम शांति। हमारी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हम हिंदी में बोलने का प्रयास करेंगे। पहले तो हम ये जो यहाँ कॉन्फ्रेंस आयोजित किए है और हमको यहाँ आने का अवसर दे दिया है, इसलिए हम ब्रह्म कुमारी के सारे लोगों का, अधिकारियों का, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। दो दिन हो गए हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि यहां आने के बाद, इतने वर्षों के बाद कुछ तो भी सीखना मिल रहा है। और दो दिन बहुत ही अच्छी तरह से यहां हमने गुजारे हैं। आज का जो विषय है, नर्चरिंग रिलेशंस विथ वैल्यूज, भाई साहब ने बहुत सी अच्छी तरह से आप लोगों से संवाद करके हम लोगों को कुछ सिखाया है, सीख दे दी है। ये जो कहते हैं कि ये कलियुग है, कलियुग में बहुत सारे संबंध बिगड़े हुए हैं, इसमें आप सब लोगों को मालूम होगा कि एक 10-15 साल के पहले से एक शब्द शुरू हो गया है जिसको अंग्रेजी में कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग टीचर्स हैं, मैं भी एक टीचर हूं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट शब्द है उससे बहुत सारे लोग घृणा करना शुरू कर दिए हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे दूंगा। जब आप स्कूल में अपने क्लास में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो वहां क्लास साफ सफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने किसी को अपॉइंट किया है। क्या कहते हैं हम उसको? सिपाही कहते हैं, प्यून कहते हैं। आप अपने मन से सोचिए कि जब आपके क्लास में स्टूडेंट आते हैं तो वो वहां जो बेंच है, चेयर है, वो साफ करने का काम इनको दे दिया गया था। आप बताइए वो साफ करते हैं सुबह? बहुत सारे क्लास में आप देखते होंगे वो साफ नहीं करते। जब लड़के लड़की आती है उस सीट के ऊपर बैठते हैं तो उनका जो कपड़ा है उसी से वो साफ हो जाते हैं। उसका परिणाम क्या हुआ है? गवर्नमेंट ने ये जो प्यून या सिपाही जिसको अपॉइंट किया था वो अपॉइंट करना बंद कर दिया है। मालूम है उसके बाद क्या हो गया है? ये साफ सफाई करने का काम जो है कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया गया है बाहर के लोगों को, इनकी नौकरी चली गई है। अभी बहुत सारे ऑफिसेस में परमानेंट स्टाफ जो है सिपाही कॉन्ट्रैक्ट पर ही रखते हैं, उनको परमानेंट नौकरी नहीं देते हैं, क्योंकि इन्होंने अच्छा अपना काम नहीं किया। काम के प्रति जो अपनी उनके लगाव चाहिए था वो लगाव नहीं था। बहन जी ने एक उदाहरण आपको दे दिया कि शादी के पहले अपना संबंध बहुत अच्छा रहता है, शादी के बाद संबंध खराब हो जाते हैं और उसका परिणाम डायवोर्स में हो जाता है। मेरे यूनिवर्सिटी का एक उदाहरण आपको देता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा। हमारे यूनिवर्सिटी में एक 10 साल पहले शादी हो गई कॉन्ट्रैक्ट पे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं ये कॉन्ट्रैक्ट शब्द है, इससे बहुत सारे लोगों को या मुझे भी घृणा है। शादी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया 6 साल के लिए, ये कहानी नहीं है, वास्तवता है। और वो दोनों 6 साल एक दूसरे के साथ रह गए। 6 सालों में जो इन्होंने कहा कि बहुत सारी बातें हो गई और 6 साल के बाद एक दूसरे ने कह दिया कि अभी 6 साल हो गए, अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, हम अलग होंगे, आप अलग हो जाओ। अलग हो गए लेकिन 6 साल में बीच में जो बच्चा पैदा हुआ था उस बच्चे का क्या? ये दोनों ने अच्छे संबंध यदि रखे होते तो 6 साल के बाद ये अलग होने की जरूरत नहीं थी। इसीलिए वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जो था वो टूट गया और वो बच्चे को अनाथ आश्रम में भर्ती करना, उनको भर्ती करना पड़ा। इसलिए यदि हम एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव रखते हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह से हम संभाल लेते हैं, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, अपने जो संबंध है, संबंध अच्छे रहेंगे। इसीलिए एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव रखना बहुत ही जरूरी है। कहानी नहीं, मैं एक पिछले ही महीने में एक इंसिडेंस हो गया है, प्रसंग हो गया है, वो आपको मैं बताता हूं। हम हमारी पत्नी हम हर साल एक वृद्धाश्रम में जाते हैं। जितना भी अपने से पॉसिबल है उतना हम मदद करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे वृद्धाश्रम को हमने भेज दे दी है। पिछले महीने में एक वृद्धाश्रम में हम गए थे, महाराष्ट्र में ही है वृद्धाश्रम, शिरूर तालुका पुणे डिस्ट्रिक्ट में है। वहां हम सुबह गए, उस वृद्धाश्रम में, वृद्धाश्रम यानी ओल्ड एज होम, वहां टोटल 22 लोग उस वृद्धाश्रम में थे। हमने एक दूसरे से बात करना शुरू कर दिया। एक बहन जी थी, उनकी आयु जो है, एज जो है, वो लगभग 75-76 ईयर की होगी। हमारी पत्नी ने उनको कहा कि आप यहां क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम पिछला जो हमारा भूतकाल है, पास्ट है, उसके बारे में बताना नहीं चाहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नर्स करके काम करती थी, मेरी पूरी आयु जो है मैंने दूसरों की सेवा करने में बिताया है। और उन्होंने जो इसके बाद जो बताया, उन्होंने कहा कि मेरे 8 बच्चे हैं, 8, और उन्होंने कहा 8 बच्चे हैं लेकिन उनमें से एक भी मुझे संभालने के लिए तैयार नहीं है। हमको बहुत खराब लगा, दुख हो गया। इसमें कौन जिम्मेदार है ये हमारा अधिकार नहीं है तय करने का। जैसे अभी भाई साहब ने कहा, ऐसा भी हो सकता है कि हमारी जीभ में बहुत सारा पावर है, इसीलिए कुछ हो गए होंगे, संबंध खराब हो गए होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि बचपन से हमने हमारे बच्चों की जो परवरिश करना चाहिए उस तरह से वो उसकी परवरिश नहीं हो गई है। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे, हर बार आपको सबको पता है, बच्चे कम समय माता पिता के साथ रहते हैं, ज्यादा समय बाहर रहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बच्चे ज्यादा समय टीचर लोगों के पास रहते हैं। पता नहीं, जैसा ये कल एक वक्ता ने, भाई ने कहा कि वो जो जग में, जार में जो एक बबल आता है, वो बबल का क्यों आता है, क्या उसका, उसके पीछे क्या है, वो मुझे पता नहीं। वैसे ही मैं अभी बोल रहा हूं कि ये जो हो रहा है इसके पीछे क्या हो रहा है, मुझे ये लगता है कि पेरेंट होके हमारी जो जिम्मेदारी है वो हम ज्यादा अच्छा तरह से नहीं कर रहे हैं। और सोसाइटी में, समाज में जब हमारे बच्चे जाते हैं वहां भी उनको अच्छी तरह से सीख, वैल्यू नहीं दे दी जा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे समाज में वैल्यू नहीं है, जो है वो वैल्यू को ज्यादा नर्चर करने की जरूरत है। वही का एक उदाहरण देके मैं मेरी बात को पूर्ण विराम दे दूंगा। वहां एक दूसरे एक 80 साल के आदमी है, वो रत्नागिरी के है, रत्नागिरी यानी कोंकण एरिया है महाराष्ट्र का, वहां के है वो। उनको जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा मेरे दो बच्चे हैं, दो बच्चों में से बच्ची जो है वो परदेश है। आजकल तो बहुत सारे, आपको पता है कि बहुत सारे लोगों के बच्चे परदेश में रहते हैं, यहां मां बाप भारत में रहते हैं। और उन्होंने कहा एक जितने भी वहां 22 लोग थे, सारे 22 लोग में से ज्यादा 17-18 लोग जो है बेड रिडन थे। बहुत सारे लोगों के नाक में वो नलिया डाली थी, आंखों से उनको दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसे स्थिति में थे। उन्होंने एक उदाहरण बताया कि परसों ही ये जो यहां बहन जी कॉट पे सोई हुई है, उनके पति गुजर गए और उसके बाद उनका जो लड़के है उनको हमने बता दिया, क्योंकि ये जो रत्नागिरी के है वही वो सारा संभालते हैं। उन्होंने कहा कि हमने उनके बेटे को बोल दिया कि आपके पिताजी गुजर गए हैं, माताजी बेड पे हैं, तो आप आके अंत्य संस्कार के लिए इनका देह लेके जाइए। तो उन्होंने कहा कि 4 घंटे के बाद उनका फोन आ गया कि हमको वहां आने के लिए टाइम नहीं है, हम यहां से पैसा भेज देते हैं, आप अंत्य संस्कार कर दीजिए। बेड पे उनकी जो बीबी सोई हुई थी, ये बोले वो इतना रो गई, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते थे। हमने उनके बेटे को कहा कि आप पैसा मत भेज दीजिए, अंत्य संस्कार हम यही करेंगे। तो वृद्धाश्रम में ही उन्होंने अंत्य संस्कार कर दिया और हम दोनों को उन्होंने वहां जाके दिखाया कि यहां हमने उनका अंत्य संस्कार कर दिया। कहां हम कम पड़ रहे हैं, किस संस्कार करने से हम कम पड़ रहे हैं, ये फिर वो जो उदाहरण है वो ही मैं आपको दे दूंगा कि हमें सोचने की जरूरत है। और लास्ट में उन्होंने जो कहा कि वो जो 85 ईयर्स के जो भाई है जो सारा संभाल रहे हैं, उन्होंने कहा कि मेरे भी दो बेटे हैं, उसमें से मैंने जो आपको बताया, लड़की परदेश में है, लड़का ठाणे में रहता है बॉम्बे के वहां। और उन्होंने कहा कि रत्नागिरी में मेरी 60 एकड़ जमीन है, वो 60 एकड़ जमीन जो है वो कितने करोड़ों रुपए की है। तो उन्होंने कहा कि मेरे दोनों भी जो बेटा है बेटी है दोनों भी, हम दोनों को संभालते नहीं है, उनकी बीबी भी वहां बेड पे है। उन्होंने एक बात जो बात कही, संस्कारों की बात मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि मेरी बीबी बहुत दिनों से ऐसी ही पड़ी हुई है, 7 साल से ऐसी ही पड़ी हुई है, बेड पे ही है, सारा मैं मेरी बीबी का मैं करता हूं। ये कहानी नहीं है, ये सच जो हो गया है मैं आपको बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि आप एक काम कीजिए ना, वो तो अभी बेड में दिखाई भी नहीं दे रही है, क्योंकि शरीर जो है शरीर इतना क्षीण हो गया है। तो उनके दोस्त लोगों ने कहा कि आप एक काम कीजिए, उनको शरीर से मुक्ति दे दीजिए, छुटकारा दे दीजिए, तकिया जो है तकिया उनके मुंह पे रख दीजिए, 2 मिनट में वो शरीर छोड़ देंगे। इन्होंने कहा कि मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि जब तक मेरी बीबी यहां सोई हुई है, ये पूरा जो वृद्धाश्रम है वो देखने के लिए मुझे शक्ति मिल रही है। उनकी वजह से मैं ये पूरा वृद्धाश्रम देख रहा हूं। ये भी संस्कार है और वो दूसरे भी संस्कार है। संबंध जो है अब दोनों के बीच में वो इतने गहरे हैं कि एक दूसरे के बिना एक दूसरे का दुख वो सह नहीं पाते हैं। ये संबंध रखने की जरूरत है। उन्होंने लास्ट में जो बोल दिया वो मैं आपको बता के मेरा भाषण में समाप्त कर दूंगा। उन्होंने कहा इतना होने के बाद भी जो मेरा 60 एकड़ जमीन वहां रत्नागिरी में है वो 60 एकड़ जमीन मैंने एक बिल्डर को बेच दी है और जितना भी पैसा आएगा वो सारा ही मैं ये वृद्धाश्रम को देने वाला हूं। कॉन्ट्रैक्ट मैंने कर दिया है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये दो बच्चों को मैंने जन्म दिया है, एक बेटा और एक बेटी, दोनों के ही नाम पे एक एक फ्लैट उनको मैंने दे दिया है। ये जो संस्कार पिता के और माता के मन में है वो हम कहां तो कम पड़ गए हैं कि हमने वो संस्कार हमारे बच्चों में बेटा बेटियों में हम नहीं दे पाए। उसके लिए जो कारण है, उसके लिए जो रीजंस हुए वो बहुत सारे होंगे, उसका रिसर्च करने की जरूरत है। लेकिन एक बात सही है, यदि हम लोग जो यहां आके ब्रह्म कुमारी में आके जो समझ में आया है कि मीठी बात करिए, अच्छे से बात करिए, अच्छे से संबंध रखिए, इससे हम लोग कुछ तो भी यहां से लेके जाएंगे। यहां आने के लिए जो अवसर दिया, आपसे जो बात करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आप सब लोगों का और ब्रह्म कुमारी का शुक्रिया अदा करता हूं।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब ने कितना सुंदर एग्जाम्पल से कि आज हमारे रिश्ते क्या बन गए हैं, रिश्तों की इम्पोर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भाई साहब बता रहे थे तो मुझे एक छोटी सी कहानी याद आई कि एक माँ और एक बच्चा घर में थे। माँ किचन में काम कर रही थी तो बच्चा एक पेपर लेकर माँ के पास जाता है और माँ को बोलता है कि माँ मैंने बचपन में जब बड़ा था तो छोटे भाई को संभाला, उसके 5 रुपया, आपने मुझे कहा कि ये चीज उठा के ले आ, उसका 10 रुपया, तुमने मुझे बाहर चीज लाने के लिए भेजा, उसका 8 रुपया, तो ऐसे करके बहुत बड़ा बिल बना देता है और माँ को बोलता है आप मेरी माँ हो इसलिए आपको 5 रुपया डिस्काउंट है तो आप मुझे 50 रुपीज दे दीजिए। तो माँ बहुत मुस्कुरा रही थी। माँ ने बच्चे को जवाब दिया कि मैंने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा नो चार्ज, तुम्हें रात भर जगा करके खिलाया नो चार्ज, जब तुम बीमार होते थे तब मैंने पूरी रात जाकर तुम्हारी संभाल किया नो चार्ज, तो लास्ट में कहा डिस्काउंट और बिल था 0। तो बच्चे को बहुत रोना आया और माँ को बोला कि माँ मैं सारी उम्र तुम्हारा ऋणी रहूंगा। तो इसीलिए हमें अपने रिश्तों को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने रिश्तों को आगे चलाना चाहते हैं तो उनकी इम्पोर्टेंस को, उनकी वैल्यूज को समझें। तुम्हारे आज के वक्ताओं ने बहुत अच्छी रीति से हमें समझाया कि कैसे हम वैल्यूज को अपने जीवन में लाएंगे तो हमारे रिश्ते जो हैं वो अच्छे बनेंगे। तो हम दोनों वक्ताओं का जोरदार तालियों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और साथ साथ मैं हरिशुक्ल भाई जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे आज के चेयरपर्सन का ईश्वरीय सौगात के साथ उनका धन्यवाद करें, क्योंकि भगवान के घर से सौगात मिलना एक सौभाग्य की निशानी होती है। तो भाई जी का ईश्वरीय सौगात के साथ सम्मान। जोरदार तालियों से अभी हम 2 मिनट के लिए उस परमात्मा की याद में बैठेंगे।